सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो,
ओम शांति। डॉक्टर सविता बहन जो हमारे बीच में विशेष इस विषय पर आपको बताने आई हैं, जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, खुश रहो खुशी बांटो, है ना। बाबा ने पिछले जो सीजन में मुरलियों में कहा है कि खुश रहो खुशी बांटो, तो अपने अनुभव के आधार से आपको वो इस विषय को स्पष्ट करेंगी। हम उनका इस भट्टी में एक हाथ की ताली के द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर सविता बहन को या नहीं? हाँ, कौन जानते हैं? हाथ खड़ा करो तो, बस इतने से ही, बाकी कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, आप महिला प्रभाग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और जैसे आपको मालूम है वैसे प्रोफेशन के हिसाब से वो डॉक्टर हैं, लेकिन आप ओरिजिनली इंदौर से हैं, और इनकी अन्य बहनें भी जो हैं वो भी बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं। और आप कितने सालों से, बहुत साल हो गए ना यहाँ आबू रहते हुए, 26, इनको 26 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, बहुत लंबा। और बड़ी आप अपने देखेंगे स्वभाव की, एकदम सरल, एकदम शांत चित, और कोई भी बहुत हेल्पफुल नेचर है। अगर कोई भी इनके पास आएगा और कुछ भी इनसे पूछेगा, चाहे उनको उनका वो विषय है या नहीं है, लेकिन वो उनको सही गाइडलाइन देती हैं, ये इनकी विशेषता है। तो आज वो आपके सामने विशेष रूप से इस विषय पर बताएंगे, क्योंकि हमें भट्टी से जाना है तो मुस्कुराते हुए जाएंगे ना, सारे खुशी खुशी जाएंगे। तो खुश रहो और खुशी बांटो, आदरणीय सविता बहन।
ओम शांति। आप सभी अभी तो खुश हैं, खुश हैं या नहीं है? बहुत खुश हैं। केवल खुश हैं या बहुत खुश हैं? क्योंकि इतना अच्छा भाग्य बाबा ने यहाँ दिया है मधुबन में, खास पांडव भवन में, जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, जो उसकी अनुभूति है वो शायद शांति वन में नहीं होती है। ऐसा अनुभव किया नहीं किया? तो बाबा तो हमें कहते हैं कि हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन ही है खुशियों की जीवन, मौजों की जीवन। यह संगम युग है ही मौजों का युग। ब्राह्मण बने ही किस लिए हैं? खुश रहने के लिए बने हैं। खुश रहने के लिए बने नहीं बने हैं, या पुरुषार्थ करने के लिए बने हैं, क्या कहेंगे? खुश रहने के लिए। तो सदा खुश रहना और अविनाशी खुशी में रहना, ये ब्राह्मणों का लक्ष्य है। अल्पकाल की खुशी तो दुनिया वालों के पास भी है ना। अल्पकाल की खुशी के लिए आज दुनिया में कितने प्रयास करते हैं, कितना धन भी खर्च करते हैं लोग, चाहते हैं जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो खुश हो जाते हैं। दुनिया में खुशी कैसे मिलती है लोगों को? ऐसे ही मिलती है ना, जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, या मेरे मन पसंद काम हो गया, सफलता मिल गई हमें, नाम मिल गया, सम्मान दे दिया किसी ने हमको, थोड़ी हमारी प्रशंसा कर दी, या अच्छा धन कमा लिया, यही चीजें खुशी देती हैं। लेकिन सदा काल नहीं रहती। आज प्रशंसा हुई, कल किसी ने निंदा भी कर दी, तो अगर प्रशंसा के आधार पर खुशी है तो निंदा खुशी गुम कर देगी, है ना। तो जैसे दुनिया वाले खुश रहते हैं, भले ऐसे ब्राह्मण भी खुश होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब प्राप्तियां हमको होती है तो हम खुश नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी खुशी का आधार ये अल्पकाल का आधार नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है कि ऐसे नहीं कि ये आधार हिला तो आपकी खुशी भी हिल गई। अगर मेरे मनपसंद प्राप्ति नहीं हुई तो भी मैं खुश रह सकती हूँ, रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ, या दुनिया वालों जैसे नहीं हुई तो उदास हो गए, मूड ऑफ हो गया, दुखी हो गए, हाँ इसने मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूँ, तो मेरा आधार कौन हो गया, वो व्यक्ति हो गया ना, वो व्यक्ति मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहा है तो मैं खुश हूँ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो मेरी खुशी गायब। तो अपने आधार को चेक करना है, हमारी खुशी का जो आधार है सबसे बड़ा वो है बाबा। हम कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया, बाबा को पाया तो सब कुछ पा लिया, और कुछ पाने का नहीं रहा, या सिर्फ सुना है, दो बातें हैं, ये तो हम सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी जब शिव बाबा का अनुभव हुआ तो उनके मुंह से ये शब्द निकले कि पाना था सो पा लिया, तो वो दिल से अनुभव हुआ। तो एक होता है कि मैंने सिर्फ इस बात को ज्ञान से समझा कि भगवान मिला माना सब कुछ मिला, या मुझे खुद निश्चय है, खुद अनुभव हुआ है कि भगवान मिला माना सब कुछ मिला, या बीच बीच में संशय आ जाता है भगवान तो मिला लेकिन ये भी तो होना चाहिए, ये सब तो नहीं मिला, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जो ये समझते हैं बाबा मिला सब कुछ मिला, उसके बाद और कोई संसार की जो हद की इच्छा है उसमें हमारी बुद्धि नहीं जाती है, वो हाथ उठाओ, देखा 50% भी नहीं है। इसका मतलब बाबा मिला सब कुछ मिला वो निश्चय अभी तक पूरा नहीं है। तो दुनिया वाले सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, एक अच्छा मकान हो जाए तो हम खुश रहेंगे, रहने के लिए एक अच्छा सा मकान तो चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर मकान हो जाए तो एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए, गाड़ी होगी तो ज्यादा खुश रहेंगे, फिर दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके पास क्या क्या कैसा कैसा है, फिर ऐसा ऐसा ही मेरे पास होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं ये सब मिलेगा तो ज्यादा खुश रहेंगे। दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि इंसान करोड़पति भी होता है ना तो भी वो सुखी नहीं रहता, तो भी वो खुश नहीं रहता, क्योंकि इच्छाएं इंसान को कभी भी सुखी रहने नहीं देती। इच्छाएं ऐसी होती हैं कि एक इच्छा पूरी होगी फिर दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी, एक मकान हो जाएगा फिर दूसरे मकान की इच्छा शुरू हो जाएगी, एक गाड़ी हो जाएगी फिर दूसरी गाड़ी की इच्छा, ऐसे होता है। लोग एक मोबाइल से संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर दूसरे नए मॉडल का कोई मोबाइल निकलता है तो वो मोबाइल मेरे पास होना चाहिए। तो ये सब बाबा कहता है जो हद की प्राप्ति है उसको बेहद की प्राप्ति में बदल दो। बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं वो अविनाशी प्राप्तियां, बाबा मिला सब कुछ मिला कैसे कहेंगे, क्योंकि भगवान में सब कुछ समाया है। तीन बातें होती हैं, संपत्ति और संबंध और तंदुरुस्ती, या कहते हैं तन मन धन संबंध, अगर इसको हम थोड़ा और विस्तार से बोलें तो स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियां, उसमें जो स्थूल होती हैं वो हैं तन मन धन और संबंध की प्राप्ति। ये सारी प्राप्ति हमें वर्तमान में भी है और भविष्य में भी, 21 जन्मों की तो गारंटी है बाबा की, आने वाले अनेक जन्मों तक, बाबा कहते हैं पौना कल्प से भी ज्यादा, ये सिर्फ कलयुग का अंतिम जब तमो प्रधान समय होता है तब थोड़ा कम ज्यादा होता है, नहीं तो जो संगम युग में ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, उनकी वो प्राप्ति इतना लंबा समय तक यानी सदा काल तक उनके साथ चलती है। तो तन की प्राप्ति है, तन की प्राप्ति है या सोचते हैं तन में रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई तो खुशी तो सबसे पहले गुम हो जाती है। आज डॉक्टर ने बता दिया आपको ये बीमारी है, संकल्प चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने हमको ज्ञान समझाया है, तीनों कालों का ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। तो कोई भी परिस्थिति को एक काल से नहीं देखना है। अगर हम त्रिकालदर्शी होकर के किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो कभी भी प्रश्नों में मन नहीं जाएगा, प्रश्न का उत्तर वहीं का वहीं हमें मिलेगा। और जब प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है तब हम राजी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और संतुष्टता ही हमें प्रसन्नता देती है। तो ये बाबा ने समझाया है कि इस तन का तो हिसाब किताब है, ये पुराना तन है, लेकिन कौन तंदुरुस्त है? आत्मा तंदुरुस्त है या नहीं है? मन दुरुस्त है तो तन भी दुरुस्त होगा। अगर मेरा मन तंदुरुस्त है, आत्मा तंदुरुस्त है, तो वो कर्म भोग भी कर्म योग की शक्ति से सूली से कांटा बन के जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और फिर सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं तो हिसाब किताब किसी ना किसी रूप में तो आएंगे ही ना। कर्मातीत बनना है आत्मा को, 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे करने हैं। तो अगर हम ज्ञान के तीसरे नेत्र को प्रयोग करते हैं तो तन की बीमारी भी हमारी खुशी को गायब नहीं करती, लेकिन और ही हम डबल लाइट बनकर उड़ती कला का अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। बीमार होने पर उड़ती कला का अनुभव करें, मनसा सेवा करें, कर सकते हैं नहीं कर सकते? सोच रहे हैं बहुत कम। तो ये शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो बाबा ने जो हमें दूसरी प्राप्ति दी है वो है ज्ञान। बाबा के साथ साथ हमें जो अविनाशी खजाने मिले हैं उसमें एक विशेष खजाना जो है वो ज्ञान का खजाना है। और ज्ञान के लिए हम कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। जितना ज्ञान का स्मरण करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। मुरली सुनते हैं खुशी मिलती नहीं मिलती? कितना भी मन आपका परेशान हो किसी बात से, आप बाबा की मुरली सुनते हैं मन हल्का हो जाता है, खुश हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं? वो परेशानी खत्म हो जाती है, जैसे बाबा ने सारा बोझ खत्म कर दिया। और अगर वही ज्ञान, अगर हमने सिर्फ सुना, एक घंटा मुरली सुन ली हम आए सेंटर पर, तो उसका असर एक घंटा और भी चलता है। एक घंटा और भी मेरा मन खुश रहता है, उस ज्ञान का असर मेरे मन पर है। बाद में धीरे धीरे कर्म में गए ना, अपने कारोबार में आ गए, बातों में उलझने लग गए, तो वो ज्ञान की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अपने संस्कार काम करने शुरू कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना, या फिर दूसरों के संस्कारों का असर मेरे ऊपर होने लग जाता है, और शाम तक होते होते मेरा मन खुश के बजाय उदास होना शुरू हो जाता है, होता है ऐसे? तभी बाबा हमको कहता है सिमर सिमर सुख पाओ। क्यों कहा? उस ज्ञान को सिर्फ सुनना है उतने तक नहीं, लेकिन उस ज्ञान का स्मरण करना है। आज बाबा ने क्या कहा, कौन सी बात मेरे दिल को लगी, फिर उस बात से मुझे क्या समाधान मिला, उसे मुझे कैसे सेवा में यूज करना है, अपनी शक्ति अपनी स्थिति बनाने के लिए मुझे उसे कैसे यूज करना है। कैसे आप मनन करोगे, ज्ञान का मनन कैसे करोगे? जिन बातों से हम व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं उन्हीं बातों से हमें ज्ञान का भी स्मरण करना है। व्यर्थ संकल्प भी क्यों चलते हैं, क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं बातों से व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना। हाँ इसने ऐसा क्यों किया, इसने हाँ ये ऐसे कैसे हो गया, हाँ ये क्या हो गया। मानो व्यर्थ संकल्प शुरू होते हैं उसका भी क क क क होता है, और ज्ञान का मनन चिंतन करना है तो भी बाबा ने ये बात क्यों कही, इसका क्या राज है, इसको कैसे यूज करना है, तो भी क्या है, वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर कई भाई बहने कहते हैं बहन जी सोचते तो बहुत है ज्ञान का, मंथन चले लेकिन चलता ही नहीं है, दूसरी बातों में इतना मन उलझा रहता है कि मुरली तो सुनते ही भूल जाते हैं, सीढ़ी उतरते ही पूछते हैं बाबा ने क्या कहा, हाँ तो दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कोई बात याद आती है, या तो आती ही नहीं है और आती है तो बड़ी मुश्किल से याद आती है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा जी, कंप्लेंट कंप्लीट की मुरली थी आज। हाँ एक जना बोलो, सब एक साथ बोलते सुनाई नहीं देता। इंतजार करने की बजाय इंतजाम करो, हाँ इसके ऊपर बाबा की मुरली थी। हाँ कंप्लेंट वाली बात, हाँ बीच में पार्टियों से बात किया होगा बाबा ने, हाँ एक पॉइंट उसमें ऐसे आया था। जोर से बोलो जोर से, हाँ एक मैं एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, बहुत अच्छी बात आपने याद रखी। आज सारा दिन ही अभ्यास करना है, तो माना कोई भी बात जो मुझे लग गई आज की मुरली से, और खासकर जो बाबा हमें नशे की पॉइंट्स बताते हैं, खुशी हमें किससे मिलती है, तो बाबा कहता है मैं कौन, हाँ ये पहला पाठ है वो स्मृति में दिलाया है बच्चों को, और वही अंतिम पाठ भी है लेकिन वो पाठ हम भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ वो तो याद रहता ही नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ वो भी याद नहीं रहता है। हाँ सारे दिन में मैं आत्मा हूँ कितना समय याद रहता है, देही अभिमानी कितना समय रह पाते हैं, जितना समय योग करते हैं उतना समय वो भी मेहनत करके देही अभिमानी रह पाते हैं, है ना। फिर जैसे ही कर्म में आए तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ देही अभिमानी बनने के साथ साथ मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। आप लोग भी बोलिए, आप तीन दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, अभी तो बुद्धि भरपूर होगी पूरी तरह से। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और पीछे से भी बोल सकते हैं मैं विजयी रत्न हूँ, बाबा ने मुझे कोटों में कोई कोई में से भी कोई हाँ चुना है, तो इतना पद्मा पदम मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तो हर दिन कोई अमृत वेले मैं अपने लिए नशे की पॉइंट, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ना बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ, नूरे रतन हूँ, मस्तक मणि हूँ, जो भी कितने स्वमान बाबा ने हमें स्मृति में दिलाए हैं, और ये सब हमारी अलौकिक स्मृतियां हैं, ये सांसारिक स्मृतियां नहीं है। संसार वाले आपको ये सम्मान दे सकते हैं, हाँ संसार में कोई ऐसे कहता है, हाँ कोई बुरे शब्द बोलने में देरी नहीं करेगा, लेकिन आपको इतना ऊंचा चढ़ा दे, अपने से भी ऊंचा चढ़ा दे, कहते हैं ना पांव की जूती से क्या बना दिया भगवान ने सिर का ताज, हम तो यही कहते थे भगवान अपने चरणों में रख लो बस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, पर भगवान ने चरणों की बजाय सिर पर बिठा दिया। तो इतनी ऊंची स्मृति जब बाबा हमें देता है, तो अगर उस स्मृति में हम रहेंगे तो हमें खुशी होगी या नहीं होगी, होगी। तो मेन बात है अटेंशन देना और चेक करना कि कितना मैं उस स्मृति में हूँ। हर घंटे मुझे वो चेकिंग अपनी करनी है कि बाबा ने जो मुझे स्मृति दिलाई, चलो इतनी सारी मुझे एक साथ याद नहीं आती, एक दिन में एक तो रख सकते हैं, रख सकते नहीं रख सकते, हाँ मैं बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ मानो, आप सारे दिन अनुभव करने की कोशिश करो और फिर देखो बाबा आपको कैसे अनुभव कराता है। दिल दख्त नशीन स्थिति का बाबा खुद ही अनुभव कराएगा। इसके साथ साथ बाबा कहता है सर्व संबंधों का अनुभव भी मेरे से करो। हम इतने भाग्यवान हैं कि स्वयं भाग्य विधाता हमें ऑफर करता है। भक्ति में तो सिर्फ कहते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, लेकिन हम कहते थे भगवान पालता है, भगवान ने ही सब कुछ दिया है, लेकिन अब स्वयं बाबा ने हमें वो अनुभव कराया है। लेकिन करने वाले करें, तो सुबह से लेकर रात तक ये भी हम अपनी दिनचर्या में सेट करें कि मुझे आज बाबा से विशेष कौन से संबंध का अनुभव करना है, या कार्य के प्रमाण, जो भी मेरा कार्य है उस प्रमाण जो संबंध चाहिए वो संबंध हम उस समय अनुभव करें। इसे कहते हैं योग का प्रयोग करना। तो जितना बाबा के साथ मेरा कनेक्शन और रिलेशन होगा, रिलेशन होगा तो कनेक्शन होगा या नहीं होगा, रिलेशन माना संबंध का मैं अनुभव कर रही हूं तो वो कनेक्शन होगा, वो याद बाबा की मुझे शक्ति और खुशी देगी। बाबा की याद सुख देने वाली है या नहीं देने वाली है? आप योग में बैठते हैं सुख मिलता है, और सुख मिलेगा, अतींद्रिय सुख का अनुभव होगा तो खुशी होगी। तो बाबा की याद जितनी मेरे पूरे दिन में बनी रहेगी, और वो सहज याद बनाने का साधन है कोई ना कोई संबंध से बाबा को याद करना। और बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, जैसे धन की बात करते हैं, स्थूल प्राप्तियों की हम बात कर रहे थे ना, तो बाबा ने हमें अविनाशी धन दिया है। ये ज्ञान धन अविनाशी धन है। दुनिया में स्थूल धन की बात करते हैं, लोग सोचते हैं जितना अधिक धन कमाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा वो धन ज्यादा कमाने जाएंगे ना, करोड़पति अरबपति पद्मपति बनने की कोशिश करेंगे तो ये धन छूट जाएगा। और बहुत भाग्यवान हो कि इस जन्म में करोड़पति नहीं हो या अरबपति नहीं हो। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि बाबा कहते हैं साहूकारों के पास समय ही नहीं है। सबसे बड़ा धन कौन सा है उसके बाद? समय का धन। भगवान को हमारा क्या चाहिए? तो धन कमाने की चिंता में खुशी गुम होती है नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? भाइयों को धन कमाने की चिंता होती है? अगर हम एक का वो कहते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं तो खुशी गुम होगी। लेकिन जितना बाबा से मिला है, बाबा कहता है संगम युग पर आवश्यकताएं सब सहज रीति से पूरी होंगी। अगर मेरे मन में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है, भले ही स्थूल बात है, धन आवश्यकता है ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन की स्थिति ऐसी है कि बाबा की याद में हम कर्म योगी बन करके धन कमाते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ तो हम सभी कर्म करते हैं, बैठते तो कोई भी नहीं है, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इतना धन तो इंसान आसानी से कमा लेता है कि नहीं है ना। चलो बाबा के बच्चे हैं तो थोड़ा सा लोभ किस बात का होगा? ज्यादा धन होगा तो कहां लगाएंगे? सेवा में लगाएंगे। थोड़ा सा और सोचते हैं कि अगर कोई ऐसे तरीके से धन आ जाए तो ज्यादा ज्यादा लगाएंगे, या सेवा में ज्यादा आवश्यकता है तो। पर बाबा कहता है जो सच्चाई से बाबा की याद में कमाया हुआ धन होता है, उस धन में शक्ति होती है। वो धन 2 रुपया भी आपका 2000 का काम करेगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी हेरा फेरी से धन कमाया, ब्राह्मण है कभी कभी कलियुग की दुनिया में रहते हैं ना, तो वो संस्कार भी काम कर जाते हैं। और अगर कहीं भी ऐसा किया तो क्या होगा? वो 2000 भी कितना काम करेगा? सिर्फ 2 रुपए का काम करेगा। तो कभी भी ब्राह्मण बनने के बाद ये हमेशा, अगर हो भी जाए गलती से तो भी बाबा से हमें सच्चे रहना है। सच्चाई सफाई से हम बाबा को वो सुना दे, और जो भी धन कमाए हम अगर हम बाबा की याद में कर्म योगी बनकर सच्चाई से कमाते हैं तो उस धन में बहुत ताकत होती है। हाँ, भले ही वो करोड़ों नहीं होगा, लाखों ही होगा, लेकिन वो लाखों आपके करोड़ों का काम करेंगे। तो बाबा कहता है आवश्यकताएं आपकी सहज पूरी होंगी, लेकिन स्थिति चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। अगर इच्छाओं के पीछे जाएंगे, हद की इच्छाओं के पीछे, तो वो परछाई के समान है। परछाई को पकड़ने जाते हैं तो पकड़ में आती है कभी? जितना पकड़ने जाएंगे उतना परछाई आगे जाएगी, लेकिन जैसे ही रोशनी को मुंह कर दिया तो परछाई पीछे आने लगती है। रोशनी कौन है? ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ जब हमारा मुख है, यानी बाबा से हमारा योग है, तो ये सब हद की इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। सोचने की भी जरूरत नहीं है, संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है, बाबा को पता है आपको क्या चाहिए। जैसे माँ बाप बच्चों की इच्छाएं खुद पूरी करते हैं ना, माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चों की क्या जरूरतें हैं, उनको हमें क्या पढ़ाना है, कैसा खाना देना है, कैसा रहना होना चाहिए, कौन चिंता करता रहता है? बच्चे चिंता नहीं करते तो माँ बाप सोचते हैं इनको जरा भी चिंता नहीं है, ऐसे होता है ना। तो भगवान हमारी चिंता कर रहा है, हमें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मिसाल दिखाते हैं ना उसमें महाभारत में, कि युद्ध का जब समय चल रहा था महाभारत में, तो एक बार चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन का बेटा था वो, उसको बहुत दुख हुआ। उसको पता चला कि मेरा बेटा जो है वो धोखे से मारा गया, तो फिर उसको जब पता चला जयद्रथ के कारण ऐसा हुआ, तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को जिंदा चिता में जला दूंगा। अब उसी दिन शिविर में जब सभी लोग विश्राम कर रहे थे तो अर्जुन भी सो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण उसके सारथी थे तो उनको चिंता थी, तो वो युद्ध की योजना बना रहे थे कि कल का युद्ध कैसे रहेगा जो अर्जुन जयद्रथ को मार सके। तो उनकी नजर पड़ी अर्जुन पर, देखा ये तो निश्चिंत सो रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने उठाया उसको, अर्जुन तुम सो रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन मुझे पता है आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो हमने सारी चिंताएं किसको सौंपी हैं? बाबा हमारी चिंता करता है, बाबा को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहने में एक शब्द आता है, जैसे माँ बाप को बच्चों का कंसर्न होता है, ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा हमारा मात पिता है, तो उसकी पूरी जवाबदारी हमारे प्रति है। और यदि हमने बाबा को सौंप दिया, सब कुछ तेरा कह दिया बाबा को, हम पूरी तरह से ट्रस्टी हैं, निमित होकर चलते हैं, तो कभी भी कोई भी बात जीवन में हमारी खुशी गुम नहीं कर सकती। हम कैसे रहेंगे? डबल लाइट रहेंगे। लेकिन इतना निश्चय चाहिए, अगर निश्चय में जरा भी संशय आता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बाबा करेगा कि, हो जाता है कभी कभी संशय, तो वहां पर वो हमारी परीक्षा होती है। भगवान भी, क्योंकि हम स्टूडेंट भी है ना, केवल बच्चे नहीं हैं, बाबा से हमारे बाप, शिक्षक और सदगुरु, तीन मुख्य संबंध है ना। तो बाबा हमारा शिक्षक भी है, उस पढ़ाई का पेपर भी होता है, तो अगर कहीं भी बात ऊपर नीचे होती है तो वो हमारा पेपर होता है, और उसमें ही हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। और उसमें अगर हम पास हो जाते हैं तो फिर हम पास विद ऑनर होते हैं, माना जरा भी हलचल का संकल्प ना आए। तो ये योग का प्रयोग है, ये करके देखना है। बाबा जिसको कहता है तीन पास का यूज करो, जो बात हो गई वो पास हो गई। कई बार बीती बातें भी मन को उदास करती हैं, मन जीवन में ऐसी ऐसी बातें तो हुई होती हैं, कभी भी उनकी याद आ गई तो मन उदास हो जाता है, खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा कहता है जो बात पास हो गई वो हो गई। अब वो बात 5000 साल के पहले लौट कर नहीं आने वाली है। कई बार लोग इस बात से भी दुखी होते हैं, अच्छा ये मेरे साथ हुआ, ये 5000 साल बाद। भगवान ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। ड्रामा तो अनादि है ना, ज्ञान तो मिला है, तो ये प्रश्न उठाना चाहिए ड्रामा क्यों बनाया, बाबा ने ड्रामा बनाया है। तो इसीलिए जो बात हो गई वो हो गई, 5000 साल बाद भी मुझे कौन सा याद रहने वाली है, वो तो बाबा जब ज्ञान देगा तब तब याद आएगी ना। तो मतलब गई वो गई, उसको मुझे अब याद नहीं करना है। लेकिन इतना ऊंचा भविष्य बाबा हमारा बना रहा है, इतनी बड़ी प्राप्ति बाबा हमें करा रहा है कि हम तो क्या, बाबा कहता है सबको मिला, ऐसे भी नहीं कि किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय। हाँ, 7 दिन का स्टूडेंट भी एक ही मूल्य सुनता है, हाँ, या अलग मूल्य सुनता है। हाँ, जैसे दुनिया में क्लासेस अलग अलग होती है ना, एक क्लास का बच्चा अलग क्लास में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी का बच्चा अलग क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ ऐसा डिफरेंस है। बच्चे भी उसी क्लास में पढ़ते हैं तो 80 साल के भी हैं वो भी उसी क्लास में पढ़ते हैं। तो बाबा कहते सबको एक जैसा दिया है मैंने, कोई अंतर मैंने रखा नहीं है। और इस बात की भी कोई उलाहना नहीं है कि हम लेट आए हैं। आज की मुरली में सुना ना, अष्टरत्न, 108 रत्न और 16000 रत्न के बारे में बाबा ने क्या बोला। बाबा ने पीछे आने वालों के लिए मार्जिन नहीं रखी, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन बस मुझे उसके लायक बनना है। तो पुरुषार्थ भी सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो आदि रत्न है यानी जो बाबा की स्थापना के समय से चल रहे हैं, और चाहे वो आज की आई हुई आत्माएं हैं। अगर मेरे पुरुषार्थ की गति वैसी है जैसी बाबा ने समझाई है, यदि हम फॉलो फादर कर रहे हैं, बाप समान स्थिति में हमारा पुरुषार्थ है, तो हम जिस माला में आना चाहें आ सकते हैं। भगवान की तरफ से खुली छूट है, समर्पित हैं। हाँ, वो ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम घर ग्रस्त में रहते हैं, हम इतनी जिम्मेवारियां संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये भी कोई बंधन है क्या। है कोई लिमिट रखी है बाबा ने। अष्टरत्न बनना है तो दो बातें बाबा ने कही, अष्ट शक्तियां सदा सदा साथ हो, कोई भी शक्ति की कमी ना हो, और जो इस वक्त ब्राह्मण परिवार के इष्ट हैं, इष्ट हैं माना जिन्हें सारा ब्राह्मण परिवार स्नेह करता है, जिन्हें सारा ब्राह्मण परिवार मानता है। कैसे मानेगा, जो हमारी धारणाएं होंगी उसके आधार पर ही तो होगा, स्नेह और सम्मान धारणाओं के आधार पर होता है। तो यदि हम उन योग्यताओं में आ जाते हैं तो अपने आप उस माला में आने के लायक होते हैं। तो बाबा ने सबको सर्व प्राप्ति कराई है। और फिर ये भी बाबा कहता है कि आपकी 21 पीढ़ी, अभी वर्तमान ही नहीं लेकिन आने वाले, आप तो पद्मा पद्म पति होंगे ही होंगे, लेकिन आपके जो पीढ़ी होगी और फिर उसकी प्रजा भी तो है, प्रजा की भी प्रजा, और फिर प्रजा छोड़ो आपके भगत, जो भगत बनने वाली आत्माएं हैं वो भी उन सब प्राप्तियों से संपन्न होंगे। तो इतने भाग्यवान हैं, लेकिन अगर हम उसको स्मृति में नहीं रखते, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। एक होता है बैंक में बहुत धन जमा है, मुझे पता ही नहीं कितना धन जमा है, तो धन है उसकी खुशी तो है, लेकिन अगर उसको यूज नहीं किया तो वो धन से उतनी प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो ऐसे ही है कि बाबा ने ज्ञान धन तो बहुत दिया है, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति तो बहुत दिलाई है, लेकिन अगर हम स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उसे स्मृति में नहीं रखते, तो उसकी खुशी का अनुभव हमें नहीं हो पाता है। तो ये तो हुई स्थूल प्राप्तियां, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्थूल प्राप्तियों के बाद सूक्ष्म चाहिए। दुनिया में लोग चाहते हैं थोड़ा नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए माना हमें पूछें लोग, हमें भी थोड़ा माने, सम्मान दें, थोड़ा कुछ शान हो हमारी भी। अगर यहाँ भी ऐसे होता है ब्राह्मण परिवार में, दुनिया में तो लोग नाम कमाने के लिए क्या क्या करते हैं वो अलग कहानी होती है। ब्राह्मण बन गए तो हम वो वाले नाम मान शान के पीछे नहीं भागते, लेकिन हमें दूसरे प्रकार का चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? बहन जी ने थोड़ा सा, हाँ आपने बहुत सेवा की और फिर भी बहन जी ने बात ही नहीं की आपसे, हाँ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, दूसरे को थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, हाँ उनको टोली खिला दी आपको। छोटी छोटी बातें होती हैं कई बार, है ना। अब बहन जी की अपनी कारोबार होती, मानो मैं तो एक मिसाल दे रही हूँ, मतलब इस तरह की कई बातें ब्राह्मण जीवन में होती हैं आपस में, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं और छोटी छोटी किसी की थोड़ी बहुत कमी से, उनकी गलती से हमें इतनी फीलिंग आ जाती है कि सारी खुशी हमारी गुम आती है। जो फीलिंग है, फीलिंग को बाबा फ्लू कहता है, और अगर फीलिंग में आ गए तो फिर हाँ जैसे फ्लू में ऐसे होता है ना, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, वही मन की स्थिति हो जाती है। फिर अकेले अकेले रहेंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। दिल शिकस्त होना हाँ, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाँ फिर अपने आप को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। कई बार जब हम दूसरों से तुलना करते हैं ना, तो फिर ईर्ष्या भी आती है। तो जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, दिल शिकस्त होना, चाहे वो ड्रामा में मेरे पार्ट से हो, दूसरों को देख करके ही होता है। बाबा की तरफ से बाबा ने अच्छी तरह से हमें समझा दिया इस बात को कि पहले आए हो या लास्ट में आए हो, हाँ प्राप्तियों में आपके कोई कमी नहीं है। है कोई कमी? बाबा ने कोई कमी दी है? हाँ, लेकिन हमें कमी फील कहाँ होती है? जब हम ज्यादा दूसरों को देखने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर जितना हम बाबा के ज्ञान का स्मरण करेंगे, आप ऐसी स्थिति में अगर उदासी आए तो बाबा ने दो तीन तरीके हमें बता रखे हैं। आप कोई मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ेंगे तो आपके मन में जब बाबा के ज्ञान की बातें आएंगी तो ये फीलिंग की बातें निकल जाएंगी। किसी का क्लास सुन लो आप, कई बार बाबा कहते हैं जो गीत हैं बाबा के, अच्छे अच्छे गीत जो बाबा पुराने समय में बजाते थे, आज के समय के भी कुछ ऐसे गीत हो सकते हैं जो आपको उमंग उत्साह दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, बाबा से हमारा कनेक्शन हो जाए, योग लग जाए। बाबा के इतने अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, तो उन गीतों को सुनो। कई बार उस समय ना योग लगता है ना ज्ञान का मंथन चलता है। जब मन की स्थिति खराब होती है ना और आप योग में बैठ जाएंगे तो योग लगता है या वही विकल्प संकल्प चलते रहते हैं? हाँ, वही संकल्प ज्यादा चलते रहते हैं। तो फिर हमें थोड़े से साधनों का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम इन साधनों का प्रयोग करके अपने मन को खुशी में लाएं, और फिर वो स्थिति का प्रभाव निकल गया और मन खुश हो गया तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। फिर ऐसे भी होता है कि कोई विघ्न आ गया, विघ्न भी कई तरह के हो सकते हैं, तो विघ्न आता है उसके लिए बाबा कहता है संगम युग कल्याणकारी है। किसी भी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता, देखने में बुरा लग रहा है, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, मानो किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है या पति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी भी कोई भी बातें हो सकती हैं। ऐसी कितनी घटनाएं, हमारे घर में आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये कलयुगी दुनिया में अचानक अकाले मृत्यु का समय है और बाबा ने अचानक और एवर रेडी का पाठ हमें पढ़ा रखा है। अचानक प्रकृति की तरफ से भी कोई आपदा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे साथ हुई तो मेरी खुशी गुम होगी? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है ना। तो फिर ये जो हमें बाबा की बात है ये इतना ज्यादा अभ्यास और अनुभव में होनी चाहिए। बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास आपको ऐसी परिस्थितियों में पास कराएगा। जब अंतिम समय होगा, अभी तो रिहर्सल का टाइम है, अब अगर अभी ऐसी कोई कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सिर्फ आपकी रिहर्सल हो रही है, लेकिन अंतिम समय में बाबा कहते हैं चारों तरफ से ऐसे वार होंगे और उस समय भी मेरी स्थिति अचल रहे, एक रस रहे, तब हम पासविद ऑनर होंगे। तब एक सेकंड की ही बात होगी, एक सेकंड का ही क्वेश्चन होगा। बाबा कहता है वो एक सेकंड में ही हाँ हमारी स्थिति का बाबा को पता चल जाएगा। तब कल्याण का बिंदु लगाना, जो भी है इसमें मेरा कल्याण है, मानो मेरा कोई हिसाब किताब था, कोई कर्ज था, वो खत्म हो गया। कर्ज चुकता होता है तो हमें खुशी होती है ना। एक बार मुझे याद है बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक सेंटर पर, अपने ही एक सेंटर पर आग लग गई थी और आग लगने से काफी नुकसान हो गया सेंटर पर। तो बाबा की सीजन चल रही थी और वो भाई बहने फिर बाबा से मिलने के लिए आए, तो बाबा ने कहा संगम युग में एक गया लाख पाया, एक गया लाख पाया। ऐसा हम सोच सकते हैं, हम सोचते हैं गया माना गया, हमारा तो नुकसान हो गया, लेकिन उसमें बाद में कितना कल्याण होता है वो समझ में तब आता है जब ड्रामा खुलता है, वो भविष्य का पर्दा खुलता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, ये तो चलो ज्ञान की बात है, लेकिन लौकिक दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो साइंटिस्ट एडिसन हुए हैं जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया, ऐसे बहुत सारे उन्होंने 1000 आविष्कार किए हैं। आप में से बहुत लोगों ने वो थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। तो वो एक बार जब लेबोरेटरी 67 साल की उनकी उम्र थी और वो लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, बहुत महंगी उनकी लेबोरेटरी, उस जमाने में 1 करोड़ बहुत होता था, 1 करोड़ की उनकी लेबोरेटरी जल के खाक हो गई। तो फिर लोगों ने उनको कहा कि आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उन्होंने कहा कि इस लेबोरेटरी के साथ मेरी सारी कमियां भी जलकर राख हो गई हैं और अब मैं नए सिरे से नए आविष्कार करूंगा। और उसके 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार कर दिया। तो ये है सोचना, इसीलिए बाबा कहता है हम पॉजिटिव सोचने की बात बहुत कहते हैं, हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव में भी हम पॉजिटिव सोचें, अकल्याण में भी हम अपना कल्याण निकाल लें। ये ज्ञान की शक्ति है कि दुख के समय में भी मुझे दुख नहीं सुख अनुभव हो, तभी तो हम ज्ञानी कहेंगे ना अपने आप को। अगर हम अज्ञानियों की तरह ही अपनी स्थिति बना लेते हैं तो फिर ज्ञान का क्या लाभ है, क्या लाभ है। मुझे याद है एक बार हम बाबा से मिल रहे थे यहीं मधुबन में, ओम शांति भवन में बाबा आता था। तो धुलिया महाराष्ट्र में एक जगह है, उस पार्टी को बाबा से मिलने आना था, लेकिन उनकी बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गई। ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन बस एक्सीडेंट होने के कारण वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जिन लोगों को थोड़ी चोटें वोटें आई उन लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा, फिर वो डॉक्टर छोड़े, वो सब कार्यवाही हो तब तक पहुंचते पहुंचते बाबा के जाने का टाइम हो गया था, यहां तक वो लोग आए तब तक। तो लास्ट बाबा के जाने का टाइम था और वो पार्टी पहुंची और बाबा से मिलने वो स्टेज पर गए, तो बाबा ने कहा कि धुलिया वालों के एक्सीडेंट हुआ ना, लेट पहुंचे तो धुलिया वालों के पाप धुल गए। तो सब हंसने लग गए क्योंकि बाबा ने इतनी अच्छी तरह जोड़ा उसको कि नाम ही धुलिया है और धुलिया वालों के पाप धुल गए। तो हम सिर्फ एक काल को देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं। वर्तमान में मेरे साथ ऐसा हो गया तो हम बहुत दुखी हो गए, लेकिन उसका भविष्य क्या है, बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा तो जानता है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को भी अब त्रिकालदर्शी बना दिया है। इसीलिए बाबा कहता है कि संगम युग कल्याणकारी है, तो आप बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। शिव बाबा भी कल्याणकारी है, समय भी कल्याणकारी है। तो फिर बाबा ने समझाया कि देखो, जितना समय आपका एक्सीडेंट में आप फंसे थे, आपको क्या याद रहा? तो सबने कहा बाबा ही याद रहा, क्योंकि बाबा को मिलने आ रहे थे तो पूरा समय बाबा में ही बुद्धि योग लगा हुआ था। तो बाबा ने कहा कि जितनी बाबा में आपकी लगन थी, योग से हिसाब किताब खत्म होते हैं, तो आपके उस योग बल से कितने जन्म जन्म के हिसाब किताब खत्म हो गए तीव्र गति से। नहीं तो इतना लगन वाला योग हमारा होता है, कोई भी परिस्थिति आती है तब मेरी लगन जितनी बढ़ती है, वैसे तो नहीं बढ़ती है। जैसे कहते हैं अग्नि में घी डालो तो आग तेज हो जाती है, तो कोई भी परिस्थिति जो है वो बाबा की याद में क्या डालती है, घी डालती है कि नहीं डालती है? तो हमारी लगन की अग्नि को वो प्रज्वलित कर देती है, और जितना हमारी वो लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है उतने हमारे विकर्म जल्दी विनाश होते हैं, उतनी हमारी आत्मा पावन बनती है, उतनी हमारी कमाई ज्यादा जमा होती है। तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कई तरह से कल्याण होता है, ये एक तरह से। फिर आने वाले भविष्य समय में हमें ज्यादा पता चलता है कि इसमें और क्या कल्याण हमारा समाया हुआ था। तो इस बात को अभी से ही घोटना, जिसको कहते हैं ना, बाबा कहते हैं घोटेंगे तो नशा चढ़ेगा, घोटेंगे नहीं तो, तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। शराबी भी शराब पीता है, या वो भांग वाला भी जितना भांग को घोटता है तभी उसका नशा होता है, नहीं तो वो स्थूल नशा भी ऐसे नहीं चढ़ता है जब तक उसको पिया नहीं जाए, ऐसे कहते हैं ना। तो ये भी बाबा ने जो हमें समझाया है, जो हमें ज्ञान दिया है, जितना वो हमारे मन में चलेगा, जितना हमारी स्मृति में चलेगा, उतना उसका नशा और खुशी हम जीवन में अनुभव करेंगे। तो हमेशा ये चेकिंग रखनी है कि मेरी स्मृतियों में क्या है। तो हमें स्वयं से खुश रहना है, स्वयं से हम तब खुश रहेंगे जब मैं कौन ये स्मृति मुझे रहेगी, दूसरे मुझे समझते हैं या नहीं समझते हैं वो नहीं, मैं अपने आप को क्या समझती हूँ और बाबा ने मुझे कितनी ऊंची नजर से देखा है, स्वयं भगवान मुझे सम्मान दे रहा है और मुझे देते हैं या नहीं देते हैं, उस बात को नहीं सोचना है। तो मैं कौन, मुझे स्वयं से प्रसन्न रहना है और मुझे दूसरों से भी प्रसन्न रहना है। दूसरों से खुश रह सकते हैं सदा? हाँ, ये बच्चे बहुत दुखी करते हैं। हाँ, सास होगी तो कहेगी बहू बहुत दुखी करती है इसलिए मेरी खुशी गुम हो जाती है। पति कहेंगे पत्नी बहुत दुखी करती है, क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं है ही दुख देने वाली दुनिया ना, तो दुख देने वालों को मुझे सुख देना है या उनसे दुख ले लेना है? हाँ, हम सुखदाता के बच्चे सुख देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं या दुख लेने वाले हैं, क्या कहेंगे? आपकी बहू दुख देती है फिर भी आप सुख दे सकते हो उसको, दे सकते हो? हाँ, बच्चे दुख दे रहे हैं फिर भी आप सुख दे सकते हैं उनको, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ जी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल? हाँ, तो मुझे सुख देना है, मुझे परिवर्तन करना है। बाबा ने हमें क्या सिखाया है, वो बदलें तो मैं बदलूं या मैं बदलूं तो वो बदलें? हाँ, मैं बदलूं तो वो बदलेंगे ना। तो हमेशा ये बात पक्की रखनी है, और अगर नहीं है तो यहां से पक्की करके जाओ कि मुझे सुख देना है, मुझे खुशी देनी है, दूसरे मुझे दे नहीं, मैं दूंगी तो मिलेगा। जैसे हम कहते हैं मैंने किसी को प्रेम दिया तो मुझे प्रेम मिलेगा, मैंने रिस्पेक्ट दिया तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं खुशी दूंगी तो मुझे भी वो क्या देंगे, खुशी देंगे, लेकिन पहले मुझे देना है। तो दूसरों से प्रसन्न हम तब रहेंगे जब हम खुशी देंगे। मैं ऐसे नहीं उसने थोड़ी सी गलती कर दी, उसकी कोई कमी हो गई, उसका कोई अवगुण मुझे नजर आ गया, बस हाँ हमने गुस्सा करना शुरू कर दिया, हमारी भी खुशी गुम उसकी भी खुशी गुम, ऐसे करेंगे तो दूसरों को हम खुश नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे भी मेरे से खुश रहें। और तीसरा हम दूसरों को प्रसन्नता कैसे दे सकते हैं? बाबा ने कहा अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन के द्वारा मेरा चित्त प्रसन्न हो। प्रसन्न होने का ये मतलब नहीं मन में तो खुशी नहीं है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, अब क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं तो लोग कहेंगे क्या बात है आपका मूड ऑफ है क्या, तो झूठ मूड भी मुस्कुराना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है क्या, करना तो पड़ता है ना। लेकिन बाबा कहता है वो खुशी नहीं, लेकिन सचमुच मेरा मन प्रसन्न हो, चित्त प्रसन्न हो, जिसे देवताओं के चेहरे दिखाते हैं। देवताओं के चेहरे मना वो हंसते नहीं है, कोई जोर जोर से देवताएं हंसते हैं, जोर जोर से हंसने को तो वास्तव में गुण भी नहीं कहा जाता है उसको, हाँ जोर जोर से कौन हंसते हैं, राक्षस हंसते हैं, तो हम तो असुर बनने वाले नहीं है, क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले। तो हमारी हंसी कैसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट वाली हंसी, है ना। तो अगर मेरा चित्त प्रसन्न है तो मेरे वाइब्रेशन ही दूसरों को खुश कर देंगे, जैसे देवताओं के दर्शन करके सबको खुशी मिलती है, दिव्य चेहरे है ना, दिव्य और प्रसन्न चित्त वाले चेहरे हैं, ऐसा ही मेरा चेहरा हो। बाबा हमको ये सिखाता है, चेहरे और चलन से हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। अगर मेरा चेहरा अशांत होगा, उदास होगा, परेशान होगा, तो मैं दूसरों को खुश कर पाऊंगी, मेरे पास अगर खुद खुशी नहीं है तो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं, ऐसा है ना। तो मेरा चित्त प्रसन्न रहे उसके लिए मन जितना भरपूर होगा, बाबा की प्राप्तियों से जितना भरपूर होगा, इसीलिए बाबा कहता है हमेशा अपनी प्राप्तियों को याद करो, कमियों को याद नहीं करो, कभी भी कमियों के गुण नहीं गाओ। हैं इस जीवन में हम कमियों पर तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, कभी कभी ऐसा होता है, हाँ इस रूप से भी दिल शिकस्त होते हैं, कोई ना कोई कारण से माया के वश हो गए, हाँ आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, हो जाता है ना, कर्मेंद्रियां हैं, कभी चलायमान हो जाती हैं, तो माया के दास बन गए, माया के वश हो गए तो भी उदास हो जाते हैं। लेकिन हो गया, जो हो गया उसका पश्चाताप मुझे बहुत नहीं करना है, लेकिन अब आगे मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, अपना चार्ट चेक करो, बाबा को सच सच सुना दो, बात को वहीं समाप्त कर देना, फुल स्टॉप लगा के आगे के लिए पुरुषार्थ करना है, बहुत ज्यादा उस पर चिंतन नहीं करना है। अगर कोई ऐसी कमी हो भी जाती है, अपने पुरुषार्थ की कोई गलती भी हो जाती है तो ना? तो ये अगर हम स्मृति में रखेंगे, संगम युग की जो हमें प्राप्तियां बाबा ने दी हैं, बेहद की प्राप्तियां, बेहद के खजाने, तो हम सदा खुश रह सकेंगे। ओम शांति।
खुश तो हम है ही और खुश रहना ही है, और जब स्वयं खुश है तो बाहर सब खुशी दिखाई देगी। मुझे एक बात याद आई, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे जमी थी आईना साफ करता रहा। तो इसीलिए हम दूसरे क्या है कैसे हैं, कोई हमारी खुशी छीन कर ले नहीं जा सकता, किसी की ताकत नहीं है सिवाय हमारे, बराबर है ना। तो यही पाठ आपको आज सविता बहन ने पढ़ाया, तो इसीलिए हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटते रही, यही ब्राह्मण जीवन की विशेष विशेषता है। तो हम सविता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख।